पृष्ठ संख्या 37, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। मेजी सरकार ने पुराने शासन के ढांचे को गिराने के लिए 3 जनवरी 1869 को पहला कदम उठाया। पुराने विभागों को समाप्त कर दिया गया और शाही युवराज के नेतृत्व में एक नई परिषद का गठन किया गया। दायमे एवं समुराय, जो सत्ता के नए आधार को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ी अड़चन थे, के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 29 अगस्त 1871 को सम्राट द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश में कहा गया, हम यह आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्र का शासन एक ही अधिकारी के हाथों में केंद्रित हो, ताकि सुधार सार रूप में नहीं यथार्थ रूप में भी लागू हो। इस अध्यादेश के द्वारा हानों की समाप्ति होने के कारण इस दस्तावेज को पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने की क्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मेजी नेताओं ने पहले जापान पर अपना संपूर्ण नियंत्रण कायम किया और फिर राष्ट्र को एक आधुनिक राजनीति एवं सरकार देने में जुट गए। उन्हें पश्चिम की प्रतिनिधि संस्थाओं ने बहुत आकर्षित किया। यह तर्क दिया गया कि पश्चिम के शक्तिशाली राष्ट्रों को बनाने में इन संस्थाओं ने भी लाभदायक भूमिका निभाई होगी। 6 अप्रैल 1868 को जारी किए गए शपथ घोषणा पत्र चार्टर ओथ में वचन दिया गया था कि व्यापक रूप से बुलाई गई सभाओं की स्थापना की जाएगी और राज्य के सभी मामलों का निर्णय सार्वजनिक विचार विमर्श से किया जाएगा। इस दस्तावेज के द्वारा एक संवैधानिक शासन व्यवस्था का आधार तैयार हो गया। 11 अक्टूबर 1881 को एक शाही अध्यादेश में एक संविधान का वचन दिया गया, ताकि नागरिकों को अपने दिशा निर्देश के लिए एक शासन मिल सके। 11 फरवरी 1889 को सम्राट ने 1889 का मेजी संविधान अपनी प्रजा को भेंट किया। पृष्ठ संख्या 38। कुछ विद्वान इस संविधान की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह मात्र एक दिखावा था और देश में राजनीतिक बदलाव लाने की ओर सच्चा कदम नहीं था। उनका कहना है कि मेजी अल्पतंत्र सत्सुमा एवं चोशु जैसी हानों का गठबंधन था। संविधान में एक ओर तो यह प्रावधान था कि जापान के साम्राज्य पर अनंत काल से चले आ रहे सम्राटों के वंश का शासन होगा, और दूसरी ओर यह भी प्रावधान था कि सम्राट साम्राज्य का मुखिया है, जिसमें प्रभुसत्ता के सारे अधिकार निहित हैं। असीमित अधिकारों वाले एक परंपरागत सम्राट को बनाए रखने का दोहरापन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक तनाव का कारण बना रहा। इस विचार के विपरीत कुछ विद्वानों का कहना है कि ऐसा सामंतवादी व्यवस्था का ह्रास करने के लिए किया गया, क्योंकि कोई भी अकेला वर्ग वर्चस्व की स्थिति में नहीं था। इन विद्वानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के असंतोष की स्थिति में निरंकुशवाद ही सबसे अच्छा समाधान था। जापानी संसद डायट में दो सदन बनाए गए, एक ऊपरी और दूसरा निम्न। निम्न सदन के सदस्य चुनाव द्वारा आते थे, लेकिन मतदान में वही लोग भाग ले सकते थे जो 15 एन या उससे अधिक कर देते थे। 1890 में चुनाव में भाग लेने योग्य पुरुषों में से केवल 15% ही वोट देने के हकदार थे। 1925 में ही सभी बालिग पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। डायट के अधिकार काफी सीमित थे और मंत्रिमंडल एवं अधिकारी वर्ग डायट की बजाय सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। सेना भी इसी प्रकार बाद में डायट को छोड़कर सीधे सम्राट से संपर्क कायम करने लगी। सैन्य आधुनिकीकरण, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। मेजी पुनः स्थापना के समय के करीब जापानी नेताओं द्वारा सेना को सशक्त बनाने के दो मुख्य कारण थे। पहला, केंद्रीय सरकार को संपूर्ण राष्ट्र पर नियंत्रण करने और अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए शक्तिशाली सेना की जरूरत थी। दूसरा, जापान को पश्चिमी शक्तियों से धमकियां मिलने शुरू हो चुकी थी और उसे डर था कि यदि उसने शक्तिशाली सेना खड़ी नहीं की तो वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए नहीं रख सकेगा। पहले सरकार विभिन्न प्रकार की स्थानीय एवं क्षेत्रीय सेनाओं पर निर्भर करती थी, परंतु ऐसी स्थिति अब न तो लंबे समय तक चल ही सकी और न ही बदलती परिस्थितियों में ऐसी सेनाओं पर ज़्यादा निर्भर रहा जा सकता था। 1871 में 10,000 सैनिकों की शाही सेना बनाई गई। अगले वर्ष सेना मंत्रालय को दो भागों में बांट दिया गया, स्थल सेना मंत्रालय और नौसेना मंत्रालय। स्थल सेना मुख्य तौर पर चोशु पुरुषों और नौसेना सत्सुमा पुरुषों के योगदान से कायम की गई। 1873 के अनिवार्य सैनिक भर्ती कानून कंस्पिरेशनल लॉ ऑफ 1873 का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ा। इस कानून के तहत सभी पुरुषों के लिए सेना में 3 साल तक की सक्रिय सेवा के लिए भर्ती होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 4 साल तक रिजर्व सेना में नाम दर्ज करवाना पड़ता था। अनिवार्य सैनिक भर्ती कानून का लागू किया जाना सचमुच एक क्रांतिकारी कदम था। तोकुगावा काल में समाज वर्गों में विभाजित था, जिसमें निम्न वर्ग के लोग अनेकों अधिकारों से वंचित थे। यहाँ तक कि वह तलवार तक अपने साथ नहीं रख सकते थे। सेना में भर्ती होने की बात तो दूर ही रही। समुराय वर्ग, जो समाज की कुल संख्या का केवल 6% था, को ही हथियार रखने का अधिकार था। अब सब कुछ रात भर में बदल गया और एक वर्गहीन समाज की नींव रखी गई। अनिवार्य सैनिक भर्ती कानून द्वारा ग्रामीण इलाकों में भी भारी परिवर्तन आए और उनका आधुनिकीकरण बड़ी आसानी से होने लगा। अब कृषकों को शहरी जीवन और उससे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होने लगी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करना भी सीख लिया। रंगरूटों को इस प्रकार के वातावरण में प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जहां पर केवल योग्यता और निपुणता के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता था। मेहनत तरक्की का मुख्य आधार था और मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन सैनिकों ने चीन जापान 1894-95 एवं रूस जापान 1904-5 युद्धों में अच्छा कार्य किया, उन्हें पदक इनाम में दिए गए। पदक प्राप्त सैनिक जब अपने अपने गांव में वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया तथा ग्रामीण सभाओं में उन्हें माननीय स्थान दिए गए। मेजी काल का नारा फुकोकु क्यो हेई अथवा संपन्न देश सशक्त सेना, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी था, जो संक्षेप में मेजी नेताओं के लक्ष्यों को दर्शाता था। चीन का दुर्भाग्य जापान को लगातार इस बात से सचेत करता रहता था कि उसका उद्धार एक सशक्त सेना में ही है, इसलिए जापान में युद्ध उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार भारी उद्योगों, इंजीनियरिंग, खान तथा जहाज उत्पादन उद्योगों को मुख्य रूप में बढ़ावा दिया गया। इस तरह आधुनिकीकरण का आरंभिक दौर सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं से प्रभावित हुआ। सम्राट ने 1882 में शाही राजाज्ञा द्वारा स्वयं को स्थल सेना एवं नौसेना का सर्वोच्च कमांडर घोषित कर दिया। इस प्रकार सशस्त्र सेनाएं सरकार के असैनिक अंग के नियंत्रण से बाहर हो गई। उन्हें अब सम्राट से सीधे संपर्क करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। सशस्त्र सेनाएं जो रुख अपनाने लगी वह समाज के दूसरे गुटों से भिन्न था। सेनाएं यह समझने लगी कि राष्ट्र के हित की सही बात केवल वही करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने यह धारणा भी बना ली कि वही राष्ट्र की सही रक्षक है और जापानी समाज के सिद्धांतों एवं परंपराओं को केवल वही बनाए रख सकती है। सेनाओं को अपने ऊपर राजनैतिक नियंत्रण भी बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे उद्योगपतियों एवं राजनेताओं को भ्रष्ट समझने लगे। 1931 के बाद तो सशस्त्र सेनाएं बेकाबू हो गई तथा जापान में सैन्यवाद का दौर आरंभ हो गया। कानूनी आधुनिकीकरण, लीगल मॉडर्नाइजेशन। सामंती जापान में ऐसे व्यक्तिगत कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं थे जिनके तहत असैनिक सत्ता की मनमानी के विरुद्ध स्वयं को बचाया जा सकता। परंपरागत कानून के तहत ही झगड़ों का निपटारा किया जा सकता था। कानूनी व्यवस्था का विकास भी नहीं हो रहा था क्योंकि कॉन्फ्यूशियसवादी ढंग से ही काम चलाया जा रहा था। व्यक्ति की जगह सामूहिक जिम्मेदारी से समाज का संचालन किया जाता था, जिसमें आपसी सहयोग तथा श्रेणीबद्धता पर जोर दिया जाता था। ऐसी दशा में पश्चिमी तौर तरीकों से झगड़े का निपटाने की प्रथा का विकास नहीं हो सकता था। नई कानून व्यवस्था में व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। पहले संपत्ति स्वामित्व परिवारों के हाथों में होता था, लेकिन अब व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार को मान्यता दे दी गई। पश्चिमी कानूनी व्यवस्थाओं की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और अनेक विचार अपनाए गए। पश्चिमी न्यायालयों की कार्यविधियों को अपनाया गया, अपराधियों को यंत्रणा देना बंद कर दिया गया। जापान पश्चिमी देशों में इस बात का प्रमाण देना चाहता था कि उसकी कानूनी व्यवस्था अच्छी तरह से विकसित थी तथा उसमें मुद्दों का निपटारा उचित ढंग से किया जाता था। पश्चिमी देशों ने जापान के साथ की संधियों में अतिरिक्त देशीय अधिकार का प्रावधान करवा रहा था। जापान के लिए यह एक अपमानजनक बात थी, लेकिन जब जापान ने अपनी कानूनी व्यवस्था का आधुनिकीकरण कर लिया तो पश्चिमी देशों ने एक के बाद एक देशेतर अधिकार को त्याग दिया। निष्कर्ष कंक्लूजन। जापान का आधुनिकीकरण इतने सफल ढंग से हुआ कि अब अनेकों विकासशील देश उसके अनुभवों का लाभ उठाना चाहते थे। हालांकि जापान के आधुनिकीकरण की कहानी से सीधे ढंग से कोई शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ पहलू ध्यान देने योग्य हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राज्य की भूमिका। राज्य ने ही आधुनिकीकरण का मार्गदर्शन किया तथा इसे गति प्रदान की। राज्य ने आधुनिकीकरण के लिए अनेक नीतियों का आधार तैयार किया। मेजी सरकार ने जापानी अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिद्वंदिता से संरक्षण प्रदान किया तथा उसे सक्रिय सहायता देकर देशीय उद्योगों को विकसित किया। राज्य ने ही विभिन्न उद्योगों को प्राथमिकता दी और आदर्श उद्योगों की स्थापना करके विदेशी तकनीकों का स्थानीयकरण किया। इन्हीं आदर्श उद्योगों को बाद में सरकार ने सस्ते दामों पर बेचकर विभिन्न उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार जापानी सरकार ने न केवल औद्योगिक मूलभूत ढांचे को निर्मित करने में संसाधनों को उपलब्ध कराया, बल्कि सुनिश्चित आर्थिक नीतियों के साथ प्रभावशाली विकास को जारी रखा। सरकार ने मेजी काल में कृषि को भी प्रोत्साहित किया। विदेशी तकनीकों को जापानी दशा के अनुसार ढालने की कोशिश की गई। राज्य ने ही देशीय विधियों को भी सुधारने में दिलचस्पी ली। अच्छे बीज की किस्मों को तैयार किया गया। सामंतवाद का अंत करके राज्य ने ही कृषि के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन हटाई। सिंचाई व्यवस्था को सुधारा गया। भूमि कर व्यवस्था की त्रुटियां भी दूर कर दी गई। इसके साथ साथ सरकार ने कृषि में सहकारी समितियों एवं ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आधुनिकीकरण से सब कुछ ठीक ही हुआ। तीव्र आधुनिकीकरण की भारी कीमत भी जापानी समाज के कुछ अंशों को चुकानी पड़ी। महिलाओं को पुरुषों से कहीं कम वेतन के लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता था। आम जनता को विशेषकर युद्ध के दौरान युद्ध का सामान तैयार करने के लिए अनेकों बलिदान देने पड़े। देश के सामाजिक संगठन पर भी तीव्र औद्योगिकी के कई दुष्प्रभाव पड़े। जापान के पड़ोसी देशों को भी उसकी विस्तारवादी नीतियों के परिणामों को झेलना पड़ा। जापान द्वारा अपनाया गया सैन्यवाद एवं विस्तारवाद कामयाब आर्थिक विकास से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था, जिसमें राज्य की भूमिका निर्णायक थी। पर्यावरण को भी जापानी आर्थिक विकास का भारी मूल्य चुकाना पड़ा।